खंड 6 अध्याय 11 श्लोक नंबर 18 लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। लेकिन हम लोग वहां पहुंचे जहां श्रीमद् भागवतम की कथा कल जहां पूरी की गई है, प्रसंग वहां पहुंची हुई है कि वृत्रासुर सेना नायक थे, महावीर थे, सेना में अकेले डटे हुए हैं देवताओं के समक्ष। हम लोगों की परम सौभाग्य की बात है कि देवताओं और असुरों की युद्ध को हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये जबकि ये संग्राम बहुत पहले हो चुका है, लेकिन आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित के माध्यम से। तो वहां पहुंचे हैं कि जहां वृत्रासुर जी अकेले युद्ध भूमि में लड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और सब देवताओं को भी धिक्कार रहे हैं और अपने पक्ष के वीरों को भी धिक्कार रहे हैं। पिछले के श्लोक में आप लोग पढ़ चुके हैं कि वृत्रासुर जी अपने सेना के योद्धाओं को बहुत धिक्कारा, उन्होंने कुछ बाकी नहीं छोड़ा, उन्होंने यहां तक कह डाला अपने पक्ष के वीरों को कि तुम लोग योद्धा नहीं हो, बेकार ही तुम लोग अपने मां को दुख दे करके इस रूप में आए हो, इस शरीर में आए हो, तुम लोग पुत्र न होकर के बल्कि मूत्र हो। शास्त्र यह कहता है कि वीरों को क्या किसी भी मनुष्य को मरने की दो तरीका सीखनी चाहिए। इस अध्याय के पिछले वाले श्लोक में जाएंगे तो शायद 10वें अध्याय का लास्ट वाला श्लोक है या उससे पहले वाला श्लोक है जिसमें यह बताया गया है कि मनुष्य को कोशिश यह करना चाहिए कि दो प्रकार की मृत्यु हम लोग प्राप्त करें। यह शास्त्र में सम्मत है कि दो प्रकार की मृत्यु में से किसी को भी प्राप्त करने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। पहली मृत्यु की व्याख्या वृत्रासुर स्वयं करते हैं कि ब्रह्म संधारणाय, पहली मृत्यु वह है जो कि भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके और इस शरीर की धरातल से अपने आप को ऊपर उठा करके यह अनुभूति न हो पाए कि मैं जीता हूं। मतलब मरणासन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हुए अपने इस शरीर की सारी स्थितियों को भूल करके इतने सन्निहित हो जाते हैं भगवान के चरणों में कि ये शरीर से कब प्राण निकला यह भी अनुभूति नहीं हो पाती। यह पहली मृत्यु है। दूसरी मृत्यु का वर्णन करते हैं वृत्रासुर जी कि अगर हम योद्धा हैं, हम अपने को पुरुष समझते हैं, नपुंसक नहीं समझते हैं, तो अगर हमें युद्ध की परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित है तो हमें पीठ दिखा करके रणभूमि से भागना नहीं चाहिए। उस रणभूमि में लड़ते हुए शरीर छोड़ देनी चाहिए। यह भी प्रशंसनीय मृत्यु है, यह शास्त्र कहता है, भागवत भी यही कहती है और महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है। यह हुई दो प्रकार की मृत्यु, और ये दोनों प्रकार की मृत्यु की स्थिति में अपने आप को वृत्रासुर जी रखे हुए हैं, अकेले डटे हुए हैं युद्ध भूमि में। सारे इनके पक्ष के वीर भाग गए, भागते हुए स्थिति को देखकर ही वृत्रासुर जी ने धिकारा अपने वीरों को, और अपने ही पक्ष के लोगों को नहीं धिकारा, देवताओं को भी कहते हैं कि अगर तुम लोग धीर पुरुष हो, धैर्यवान हो, तो तुम लोग इस युद्ध की स्थिति में एक क्षण ठहरो और मेरी बातों को सुनो, और मेरे से प्रतिद्वंद करने की स्थिति में खड़े रहो, क्योंकि वृत्रासुर जी भागने की स्थिति में नहीं है। और वहां उपदेश देते हैं देवताओं को, धिक्कारते हुए यह उपदेश है कि अरे चलो, असुर तो अज्ञानी है या कायर वीर है, जो आप लोगों को देख करके, आप लोगों की शक्ति को देख करके भाग रहे हैं युद्ध भूमि से, लेकिन आप लोग कौन से वीर हो जो भागते हुए कायर पुरुषों के पीछे दौड़ करके और उनको उनके ऊपर पीछे से वार कर रहे हो। यह वीरता की काम, यह वीरता की स्थिति नहीं है, यह वीर पुरुषों का कार्य नहीं है। देवताओं को भी उन्होंने धिक्कारा। अब कथा आगे बढ़ते हुए यह हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि वृत्रासुर जी धिक्कारने के बाद अब अकेले पड़े हुए हैं, और जब देखे कि हमारे पक्ष के वीर भाग गए, तो उन्होंने अपने वीरता को खोया नहीं, धैर्य के साथ इतने जोर से उन्होंने अट्टहास किया, गर्जना किया कि जिनके गर्जने की आवाज सुनते ही देवता धरसाई हो गए, गिर गए। और वृत्रासुर जी ऐसे अपने पैरों से उन देवताओं को रौंदने लगे, उदाहरण दिया हुआ है इस अध्याय के अंदर, कि जैसे कोई मतवाला हाथी गन्ने के खेत में, या एक गन्ने जैसा ही एक पौधा होता है जिसको सरकंडे कहते हैं, बहुत घना होता है, उसमें घुसना बड़ा भारी पड़ता है, लेकिन वैसे घने सरकंडे के जंगल में हाथी घुस जाए, पागल हाथी, और जैसे उस सरकंडे के वन को रौंद डाले, वैसे वृत्रासुर जी देवताओं के शरीर को अपने पैरों से कुचल रहे हैं। अब सोचो कि वो वीर कैसा है जिसके गर्जना करने मात्र से सब देवता गिर गए और अकेले डटे हुए हैं। अब इंद्र का उत्साह बढ़ाते हुए और अपने भाई के बैर की साधने की भाव को देखते हुए, जैसे ही इंद्र अपने हाथ में धनुष बाण और ब्रह्मास्त्र लेकर के इंद्र के समक्ष खड़े हैं, अरे वृत्रासुर के समक्ष खड़े हैं, तो उनको देखते हुए वृत्रासुर जी क्रोधावेश में बोल रहे हैं कि तूने मेरे भाई का हत्या किया है, तूने जब अपने गुरु का नहीं हुआ, जब तुम अपने गुरु का नहीं हुआ तो तुम और किसी का क्या हो सकते हो। और उसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुरु की हत्या कर देता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी जघन्य कार्य कर सकता है, तो उसको चार चीज पहले ही छोड़ देते हैं। कहते हैं चार चीज में पहला बताते हैं हरी, हरी मतलब लज्जा, दूसरा श्री, श्री मतलब ऐश्वर्य, और तीसरा कीर्ति, और चौथा दया। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में अंधा होकर के अपने पूजनीय व्यक्तियों की हत्या कर देता है, तो ये चार चीज पहले ही उसको, उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। अब सोचिए कि इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का नाम ही रखा वृत्रासुर का दिव्य गुण। कोई साधारण गुण नहीं, वृत्रासुर का दिव्य गुण यह है। आप सोच सकते हैं कि ये असुर योनि में है वृत्रासुर जी, लेकिन कितनी ऊंची स्थिति में है, ये इंद्र जैसे व्यक्ति को उपदेश दे रहे हैं कि तुम तो इतने निंदनीय व्यक्ति हो कि तुम जब अपने गुरु की हत्या कर सकते हो अपने राजपाट के लिए, तो तुम क्या मेरे समक्ष लड़ोगे। उनका कहने का भाव यह था, परोक्ष में मतलब आड़ में वृत्रासुर जी यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर भगवान विष्णु ने ऐसी अनुमति नहीं दिया होता, ब्रह्मास्त्र बना करके मेरी हत्या करने का उपाय नहीं बताया होता, तो तेरे जैसे इंद्र, तेरे जैसे कितने भी इंद्र मुझे मार नहीं सकते थे। गुण रहस्य यह था। वास्तव में यह भगवान की योजना थी कि भगवान विष्णु ने उन्हें मारने के लिए उपाय बताया, और यह भगवान की योजना थी कि वृत्रासुर जैसे असुर व्यक्ति के हृदय में बैठ करके ब्रह्म संधारणाय करा रहे हैं भगवान, मतलब अपना स्मरण करा रहे हैं। युद्ध की स्थिति में, युद्ध भूमि में है वृत्रासुर जी, लेकिन भगवान की स्थिति को देखते हुए उनके स्वरूप को, और इस प्रकार की शास्त्रोक्त विधि बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत का अगर प्रथम स्कंद पढ़ेंगे तो पहले स्कंद का सातवां अध्याय का 36 श्लोक है, जिसमें यह बताया गया है कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम वीरथम हीनम नवै रिपुह हन्नन्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि हे अर्जुन, इन स्थिति में अपने दुश्मन को भी नहीं मारना चाहिए। किस परिस्थिति में? कि मत्तम, अगर दुश्मन पागल हो, अगर मतवाला हो चुका हो, किसी प्रकार का नशीला पदार्थ खा करके अपने होश को खो गया है, तो उस स्थिति में अपने दुश्मन के ऊपर वार नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम, विशेष रूप से जो पागल हो चुका है, जैसे इंद्र जैसे अंधे हो गए हो अपने स्वार्थ में, अगर उस स्थिति में अगर वो अंधा हो चुका है, तो हे अर्जुन ऐसे दुश्मन के ऊपर वार नहीं करना चाहिए। उन्मत्तम, जिसने अपना होश हवास खो बैठा है, उसको अपने शरीर की कोई स्थिति के विषय में पता नहीं है कि मैं किस स्थिति में हूं, उन्मत्त हो चुका है, तो वैसे व्यक्ति के ऊपर भी वार नहीं करना चाहिए। सुप्तम, सोए हुए पुरुष के ऊपर। बालम, जो बच्चा हो, आपसे अगर लड़ने लायक नहीं हो, जोड़ी का न हो, तो वैसे व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए। सुप्तम स्त्रियम बालम, और जडम, जडम का अर्थ भी पागल से मिलता जुलता है, क्यों, जो जड़वत है, देखते हुए भी नहीं देख पा रहा है, कुछ करते हुए भी करने की स्थिति में नहीं है। प्रपन्नम, जो आपके शरण में आ गया हो कि भैया आप वीर हो, आप मुझे मत मारो, तो उस स्थिति में भी उस प्रतिद्वंदी व्यक्ति के ऊपर वार नहीं करना चाहिए। भीतम, जो डर गया हो, डर करके भी आपको हाथ जोड़ लिया कि भैया मैं हार मान गया, अब मुझे मारो मत। प्रपन्नम वीरथम भीनम, भीतम, जो वीरथी हो गया हो, जो जिसका रथ टूट गया हो, रथहीन हो गया हो, तो वैसे व्यक्ति के ऊपर भी वार नहीं करना चाहिए। नवई हंति रिपुह, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे दुश्मन को नहीं मारना चाहिए। आप सोच सकते हैं, इंद्र को देख सकते हैं, देवताओं को देख सकते हैं कि पीछे से वार कर रहे हैं। वृत्रासुर में और इंद्र में कितना अंतर है समझ सकते हैं। अब वास्तव में एक एक श्लोक याद आ रहा है पीछे वाला कि वृत्रासुर की भाव क्या है, लेकिन कथा को आगे बढ़ानी है, 8:30 हो चुका। श्लोक हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि सब दिख रहा है। सुनने का मतलब है जो रेगुलर क्लास में आते हैं उनको अपने हृदय में इन कथा को वीडियो रूप में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कि हम क्या सुनने जाते हैं मंदिर के अंदर, हमने आज क्या पाया, हमने मंदिर से लेकर के क्या आया। अगर इस वस्तु को जो व्यक्ति अपने हृदय में ले लेता है, सदा के लिए रख लेता है, तो उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान को अपने पास बुलाने का, अपने हृदय में रखने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय श्रीमद् भागवतम है। भगवान ने स्वयं यह बात स्वीकार किया है कि जो व्यक्ति केवल भागवत सुनने के लिए, जय श्री सिद्धार्थ राधिका रमन जी की, कृष्ण बलराम की, गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, भगवान ने अपने बंदी बनने का स्वयं उन्होंने उपाय बताया कि जो व्यक्ति केवल कथा सुनने का इच्छा बना लेता है तो मैं उस व्यक्ति के हृदय में बंदी बन जाता हूं। तो सुनने की अगर उत्कट इच्छा है तो भगवान हमारे साथ हैं, जो चाहे हम भगवान से करा सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपने शुद्ध भक्तों के हमेशा अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हूं। भगवान अपने भक्त से कभी स्वतंत्र नहीं है। इसलिए यहां देख सकते हैं वृत्रासुर की स्थिति से कि उनकी स्थिति क्या है और शिक्षा लेनी चाहिए। एक शब्द और आया है वृत्रासुर जी के लिए, जिस शब्द को 7वें स्कंद के अंदर प्रहलाद महाराज ने भी उच्चारण किया है। असुर वरश्रेष्ठ तत्साधु मन्ने सुरवर्ज देहिनाम सदा समग्नि धिया मसद ग्रहात हित्वात पापम गृहमंद कूपम वनम गतो जद हरिमाश्रयेत। वहां भी प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को असुर श्रेष्ठ कहा, और यहां भी इस अध्याय के अंदर वृत्रासुर जी के लिए असुर वर शब्द आया है कि आप भी असुरों में सर्वश्रेष्ठ हो। एक जगह श्रीमद् भागवतम का सप्ताह कर रहे हैं हमारे गुरु भाई गिरवरधारी दास बताते हैं कि पूरे भागवतम में सर्वश्रेष्ठ प्रसंग वृत्रासुर के प्रसंग को माना गया है। जो विपरीत परिस्थिति में, मतलब विपरीत कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उनकी स्थिति एक भक्त से भी कई गुना ऊंची है। तो हम लोग श्लोक पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। जय राधिका रमन जी। एक दो आदमी आप लोग आवृत्ति कीजिएगा। अथो हरे मे कुलिसेन वीर हर्ता प्रमथ्य एव शिरः यदि इह तत्र अनृणः भूतबलिम् विधाय मनस्विनाम पादरजः प्रपस्से। अथो हरो मे कुलिशे नवीर हरता प्रमथ्यैव शिरो यदिह तत्रा नृणो भूत बलिं विधाय मनस्विनां पादरजो प्रपत्से अथो हरे मे कुलिशेन वीर हरतां प्रमथ्यैव शिरो यदिह तत्रा नृणो भूत बलिं विधाय मनस्विनां पादरजो प्रपत्से बोलिए अथो हर मे कुलिशे नवीर हरतां प्रमत्यैव शिरो जगेह मताएं अथो हरे मे कुलिशे नवीर हरतां प्रमथ्यैव शिरो यदिह तत्रा नृणो भूत बलिं विधाय और शब्दार्थ अनुवाद सा तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। क्षमा करना प्रभुपाद। अथो अन्यथा हरे हे इंद्र मैं मेरे कुलिशेन अपने वज्र से वीर हे वीर हरता काट लो प्रमथ्य मेरी सेना को नष्ट करके एव निश्चय ही शिरः शिर यदि यदि ए इस युद्ध में तत्र उस दशा में अनिर्ण उत्तीर्ण भूत बलिम समस्त जीवात्माओं के लिए भेंट विधाय व्यवस्था करके मनस्विनाम नारद मुनि जैसे परम साधुओं की पादरज चरण कमलों की धूलि प्रपत्से प्राप्त करूंगा। अनुवाद को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनिए, उसके बाद मेरे पीछे बोलिएगा। किंतु यदि तुम युद्ध में अपने वज्र से मेरा सर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो तो हे परम वीर इंद्र मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं जैसा सियारों तथा गिद्धों को भेंट करने में परम प्रसन्न होऊंगा। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन से छूट जाऊंगा और यह मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त कर सकूंगा। अनुवाद को कृपा करके आप लोग दोहराइए कि मेरी भी वाणी पवित्र हो और आपकी भी। किंतु यदि तुम युद्ध में अपने वज्र से मेरा सर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो तो हे परमवीर इंद्र मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं यथा सियारों तथा गीधों को भेंट करने में परम प्रसन्न होऊंगा। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन से छूट जाऊंगा और यह मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त कर सकूंगा। अब जहां से प्रभु जी ने कथा को छोड़ा था उन श्लोकों का अनुवाद हम पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 6 से, क्योंकि पांचवा श्लोक श्री कृष्ण हरि प्रभु बोल चुके थे उस श्लोक के ऊपर, जिसको जिस कथा को एक बार याद दिलाने के लिए मैं कल के भी अनुवाद को एक बार पढ़ देता हूं कि आप लोग अपने टूटे हुए इस कथा के श्रृंखला को जोड़ सकें। कि हे तुच्छ देवों, यदि तुम अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है, यदि तुम्हारे अंतस्थल में धैर्य है और यदि तुम इंद्रियों के कामी नहीं हो तो मेरे समक्ष क्षण भर ठहरो। इंद्र को और उनके साथियों को इस प्रकार का संबोधन करते हुए वृत्रासुर जी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा राजा परीक्षित से, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परम क्रूर एवं अत्यंत शक्तिशाली वीर वृत्रासुर देवताओं को अपने बलिष्ठ एवं सुदृढ़ शरीर से भयभीत करने लगा और जब उसने जोर का सिंहनाद किया तो सारे जीव अचेत हो गए। अब सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सावधान कर रहे हैं, हे परीक्षित ध्यान से सुनो कि वृत्रासुर ने अट्टहास किया तो क्या स्थिति पैदा हुई, ध्यान दो। अब सारे जीव वृत्रासुर के अट्टहास से अचेत हो गए। जब समस्त देवताओं ने वृत्रासुर की सिंह जैसी भयानक गर्जना सुनी तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर वज्रपात हुआ। अभी प्रहार करना तो बाकी है, केवल मुख से ही सबको मार डालो। श्लोक के शब्दों को पढ़ने से तृप्ति नहीं हो रही है, एक एक शब्द है जिस पर बहुत बोला जा सकता है, लेकिन अनुवाद को मैं पढ़ रहा हूं कि जैं ही देवताओं ने, श्लोक नंबर 8, कि जैं ही देवताओं ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल धारण करके और अपने बल से पृथ्वी को दहलाते हुए युद्ध भूमि में देवताओं को अपने पैरों के तले उसी प्रकार रौंद डाला जिस प्रकार पागल हाथी नरकट के बन को रौंद डालता है। सरकंडे कह लीजिए, नरकट कह लीजिए, या हम लोगों की तरफ सरपत भी कहते हैं इसको, ईख जैसा एक पतला पतला पौधा होता है जो बहुत घना होता है, अगर उसमें अगर प्रवेश कीजिए तो जैसे ईख का पत्ता शरीर को फाड़ देता है वैसे उसके भी पत्ते शरीर को फाड़ देते हैं। श्लोक नंबर 9, वृत्रासुर की करतूत देखकर स्वर्ग का राजा इंद्र अधीर हो उठा। अब देखो, भगवान ने सारा उपाय बता दिया, सारा कुछ इंद्र को मिल गया, फिर भी बेचारे इंद्र की क्या स्थिति है, अधीर हो गया और उस पर एक गदा फेंकी जिसको काटना अत्यंत दुष्कर था, फिर भी जैसी वह गदा उसकी ओर झपटी वृत्रासुर ने उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। बड़े प्रयास करके बड़े साहस के साथ इंद्र ने गदा का प्रहार किया वृत्रासुर के ऊपर वो भी वृत्रासुर जी ने खेल खेल में बाएं हाथ से उस गदा को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद क्या किया आगे सुनिए। फिर सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सावधान कर रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, कहीं तुम्हारा ध्यान इधर उधर तो नहीं है, ध्यान दो, सुनो। इसलिए बीच बीच में कथाकार लोग कभी कभी हम लोग देखते हैं जय ध्वनि करते हैं कि जो तमोगुण में प्रवेश कर रहा हो उसकी निद्रा खुल जाए। वैसे ही राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी सावधान कर रहे हैं, ध्यान से सुनो कि हे राजा परीक्षित, इंद्र के शत्रु पराक्रमी वृत्रासुर ने उस गदा से क्रोधपूर्वक इंद्र के हाथी के सिर पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह युद्ध भूमि में चिघाड़ने लगा। इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की। बाएं हाथ से गदा को पकड़ लिया वृत्रासुर जी ने, और उल्टी फिर उस गदा को उन्होंने इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी के ऊपर मारा। अब श्लोक नंबर 10 के अंदर एक शब्द आया है, सप्त धनु वृषार्थ। 11 श्लोक का लास्ट शब्द कि सात धनुष केवल गदा उलट करके मारने से, वृत्रासुर ने जब फेंका ऐरावत हाथी के ऊपर, तो सात धनुष इंद्र को लिए हुए ऐरावत हाथी पीछे हट करके और पृथ्वी पर चक्कर काटते हुए गिर पड़ा। सप्त धनु वृषार्थ, प्रभुपाद जी शब्दार्थ में लिखते हैं, सप्त धनु मतलब सात बाणों के तुल्य दूरी, लगभग 14 गज। 14 गज इंद्र को लिए हुए ऐरावत हाथी पीछे हटा और चक्कर काट करके गिर पड़ा। वृत्रासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्र के द्वारा ताड़ित पर्वत के समान तीव्र वेदना का अनुभव करता हुआ तथा टूटे मुंह से रक्त उगलता हुआ 14 गज पीछे चला गया। अत्यंत वेदना के कारण वह पीठ पर बैठे इंद्र के समेत भूमि पर गिर पड़ा। श्लोक नंबर 12, जब उसने देखा कि इंद्रवाहन हाथी थका हुआ एवं घायल है और उसे इस अवस्था में देखकर इंद्र स्वयं खीन है, तो वह महापुरुष वृत्रासुर धर्म के नियमों का पालन करते हुए इंद्र पर अपनी गदा से पुनः प्रहार करने से हिचका। यह नहीं कि अब अच्छा मौका है, इंद्र गिरा हुआ है और मैं उसके ऊपर वार कर दूं। वीर पुरुष वीरों को तैयार करके लड़ते हैं, यह नहीं कि असावधान हो गया वीर तो उसको धोखे से मार दो। जब देखे इंद्र की, अरे वृत्रासुर जी की इंद्र की स्थिति यह है, तो प्रहार करने से हिचक गए, मारे नहीं। इस अवसर का लाभ उठाकर इंद्र ने अपने अमृतवर्षी हाथ से हाथी को छू दिया, जिससे उस पशु की पीड़ा जाती रही और उसके घाव ठीक हो गए। तब हाथी तथा इंद्र दोनों चुपचाप खड़े हो गए। अन्यत्र एक जगह मैंने पढ़ा है, एक व्यक्ति ने लिखा है कि इंद्र के तर्जनी अंगुली में अमृत का अंश था। एक प्रमलोचा नाम की एक अप्सरा थी जो कभी इस पृथ्वी के किसी वीर से मिल करके गई और उसको असमय में छोड़ करके एक पुत्र यजन करके चली गई। तो जब वह पुत्र भूख से रोने लगा, चिल्लाने लगा, तो उस प्रसंग में भी भागवत में भी यह प्रसंग है लेकिन विस्तार से नहीं है कि उस पुत्र को इंद्र ने अपना तर्जनी अंगुली का पान करा करके उसको पाला। यहां भी इंद्र ने अपने हाथ से अमृतमय स्पर्श किया ऐरावत हाथी को, जिससे ऐरावत हाथी का सारा दर्द मिट गया, फिर वो पुनः स्थिति में आ गया। अब देखिए, अब फिर इंद्र और ऐरावत दोनों वृत्रासुर के समक्ष लड़ने के लिए तैयार होते हैं। हे राजन, जब परम वीर वृत्रासुर ने अपने शत्रु तथा अपने भाई के हत्यारे इंद्र को अपने समक्ष लड़ने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए देखा, तो उसे स्मरण हो गया कि इंद्र ने किस क्रूरता के साथ उसके भाई का वध किया था। इंद्र के पाप कर्मों को सोचते हुए वह शोक तथा विस्मृति से पागल हो उठा और व्यंग से हंसते हुए उसने इस प्रकार कहा। अब वृत्रासुर जी क्या कह रहे हैं, अब यहां से अब वृत्रासुर जी धिक्कारते हुए और अपने हृदय के भाव को और गाढ़ बनाते हुए उन्होंने श्लोक कहा है। इस अध्याय के श्लोक नंबर 19 से लेके 24 या 25 तक इस अध्याय के अंदर श्लोक है, 27 तक, जिसमें 9 श्लोकों में वृत्रासुर जी ने ऐसे गुह्य रहस्य बताया जिसको जो परम भागवत लोग हैं उसको नित्य स्मरण करते हैं। अब वृत्रासुर जी क्या कह रहे हैं, अब आप लोग भी ध्यान दीजिए कि वृत्रासुर ने कहा कि वह जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, वह जिसने अपने गुरु का वध किया है, वह जिसने मेरे भाई की हत्या की है, इस समय सौभाग्यवश मेरे शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़ा हुआ है। किस रूप में वृत्रासुर जी इंद्र को देख रहे हैं, उस समय भावावेश में है, भाव क्या है, दृश्य को देखने का प्रयास कीजिए। अब वृत्रासुर जी कहते हैं, इस समय सौभाग्यवश मेरे शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़ा हुआ है। अरे नीच, जब मैं तुम्हारे पत्थर सदृश हृदय को अपने त्रिशूल से भेद लूंगा, तभी मैं अपने भाई के ऋण से उत्तीर्ण हो सकूंगा। वृत्रासुर के भाई कौन थे? जोर से बोलिए, विश्वरूप। और इंद्र के गुरु कौन थे? नहीं नहीं पुरोहित गुरु, जिनको उन्होंने पुरोहित गुरु बनाया था, विश्वरूप। शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, कोई भी गुरु हो, किसी भी परिस्थिति में हत्या करने लायक नहीं है। भागवत का दशम स्कंद पढ़ेंगे तो एक सती पत्नी को संकेत करते हुए भागवत में बताया गया है कि पति अंधा हो, लंगड़ा हो, कामी हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन जो सती स्त्री है वो किसी भी परिस्थिति में अपने पति को नहीं छोड़ सकती है। वैसे ही हमारे भगवान इतने बड़े दयालु, इतने बड़े कृपालु, इतने हितैषी हैं कि किसी भी परिस्थिति में भगवान के किसी भी प्रकार का जो भक्त है उसको भगवान कभी भूल नहीं सकते। इसलिए अब यहां यह देखिए कि इंद्र जी को अब अपने भाई के हत्यारे के रूप में, गुरु के हत्यारे के रूप में वृत्रासुर जी इंद्र को देख रहे हैं। और वास्तविक स्थिति यह है कि ऐसे व्यक्ति को इसी दृष्टि से देखना चाहिए, जो अपने गुरु का नहीं हुआ तो किसका हो सकता है। अब श्लोक नंबर 15। तुमने स्वर्ग में निवास करते रहने के उद्देश्य से मेरे बड़े भाई का जो स्वरूप सुहित आत्मवेता निष्पाप एवं सुपात्र ब्राह्मण था, जिसे तुमने अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया था, बध कर दिया है। वह तुम्हारा गुरु था और यद्यपि तुमने अपना यज्ञ कराने का सारा भार उस पर छोड़ रखा था, किंतु बाद में अत्यंत क्रूरता के साथ उसके सिर को शरीर से उसी प्रकार छीन कर दिया जिस प्रकार कोई पशु की हत्या कर देता है। ध्यान देने की बात है। अब देखिए, अब वो चीज बता रहे हैं कि जो गुरु का हत्यारा है, जो किसी साधु को मारता है या किसी को धोखा से मारता है, तो उसको कौन कौन सी चीज छोड़ देते हैं जिसको मैंने बताया, उस चीज को वृत्रासुर जी यहां कह रहे हैं कि अरे इंद्र, तुम सभी प्रकार की लज्जा, दया, कीर्ति तथा ऐश्वर्य से विहीन हो। अब इस स्थिति में इंद्र खड़े हैं, उनके पास अब एक ही लास्ट सहारा है, जो दधीचि ऋषि के हड्डी से जो बना हुआ वज्र है, उसी के सहारे इंद्र खड़े हैं। अन्यथा एक अट्टहास में इंद्र फिर गिर जाते और शरीर भी छोड़ देते। अरे इंद्र, तुम सभी प्रकार की लज्जा, दया, कीर्ति तथा ऐश्वर्य से विहीन हो। अपने कर्मों के बंधन से इन सद्गुणों से रहित होकर तुम राक्षसों के द्वारा भी निंदनीय हो। सदपुरुष तो छोड़ो, तुम ऐसे गलत व्यक्ति हो कि तुम्हारा निंदा असुर भी करेंगे। अरे गुरु की जो हत्या कर सके, सारा अपना यज्ञ भार उसके ऊपर सौंप दे और उस व्यक्ति की फिर हत्या कर दे, तो ऐसे व्यक्ति का निंदा कौन नहीं करेगा। अब मैं तुम्हारे शरीर को अपने त्रिशूल से बेध डालूंगा और जब तुम अत्यंत कष्ट से मरोगे तो अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, जबकि यह शरीर अग्नि का आहार है। शरीर के तीन गति होता है, कृमि, वीड और भस्म। किसी का भी शरीर हो, उसकी तीन गति होता है। अगर इस शरीर को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है तो कीड़े बन जाते हैं, कृमि कीड़े बन जाता है, बीट। या इस शरीर को अगर कोई जीव खा जाता है तो मल कर देता है, मल बन जाता है। या इस शरीर को जला दिया जाता है तो भस्म राख बन जाता है। इस शरीर की तीन गति। अब यहां संकेत कर रहे हैं वृत्रासुर जी इंद्र को कि तुम इतने बड़े जघन्य व्यक्ति हो कि तुम्हारी इस शरीर को अग्नि भी नहीं स्वीकार करेगी, जिसका भोजन है वह भी तुमको नहीं खाएगी। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी शास्त्र विरोधी कार्य हैं, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, गुरु स्वीकार करने वाले को या भक्ति पथ पर चलने वाले व्यक्ति को, बहुत ही ध्यान पूर्वक भक्ति पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो भक्ति पथ पर चलने को स्थिति को ऐसा बताया गया है कि एक तेज छुरे के धार के ऊपर से हम लोग चल रहे हैं। अगर कहीं थोड़ा सा भी असावधान हुए तो हमारी बुरी स्थिति हो जाएगी। इसलिए भक्ति को बहुत सावधानी से करने की जरूरत है। शास्त्र के अनुमति के अनुसार अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति फलीभूत होती है, विकसित होती है, नहीं तो ठूंठ वृक्ष की तरह। रूप गोस्वामी ने एक जगह लिखा है कि अगर जिस छोटे पौधे को अगर बकरी खा जाए तो उस पौधे को बढ़ने में बहुत देर लगता है, वो जल्दी बढ़ नहीं पाता है। वैसे है जो भक्ति पथ पर चलने वाला व्यक्ति है, अगर असावधानी से भक्ति करता है, कभी नियम पालन करता है, कभी छोड़ देता है, तो ठूंठ वृक्ष की तरह, ठूंठ पौधे की तरह वहीं का वहीं रहता है। दूसरा उदाहरण उस नाव का दिया हुआ है भागवत के अंदर। जिस नाव की बंधी हुई रस्सी को खोला नहीं गया है और उस नाव के ऊपर सवार होकर के पूरी रात उस नाव को चलाया जा रहा है और हम वहीं के वहीं हैं। बहुत सावधानी के साथ भक्ति करने की जरूरत है। अब श्लोक नंबर 17 पर आइए कि तुम प्रकृति से क्रूर हो, मतलब हे इंद्र तुम स्वभाव से ही स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए तुम कुछ भी कार्य कर सकते हो। माताएं बुरा नहीं मानना, अदिति और कश्यप प्रसंग में श्रीमद् भागवत के अंदर ही कश्यप जी ने कहा है स्त्रियों के प्रति कि स्त्रियां इतनी स्वार्थ पूर्ण होती हैं कि अपने स्वार्थ को पूर्ति कराने के लिए अपने भाई, अपने बाप और अपने पति तक की हत्या करा देती हैं। ये भागवत कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। इतनी स्वार्थ की भावना है सबके अंदर। लेकिन अब सोचिए कि जो भगवान के पिता वामन देव के पिता कश्यप जी हैं, उनकी यह वाणी है स्त्रियों के प्रति, तो यह किसी भी जीव के प्रति, खास करके मनुष्यों के प्रति भी यह नियम लागू हो सकता है। लेकिन वहां संकेत है कश्यप जी का दीति के प्रति, राक्षसों की मां, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति कराने के लिए अपने ही दूसरे सवत के पुत्र को मारने के लिए उपाय और पुत्र उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना कर रही है। तब कश्यप जी कहते हैं कि वो भी तो तुम्हारे ही संतान है, तुम जिसको मारने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए कह रही हो, क्योंकि हम लोग दीति और अदिति के ही संतान हैं, जितने भी असुर हैं, मनुष्य हैं, कश्यप जी के ही संतान हैं। तो कश्यप जी साधु थे, उन्होंने अपनी भाव प्रकट किया कि नहीं, किसी को नहीं मारना चाहिए। तुम प्रकृति से क्रूर हो, स्वभाव से तुम क्रूर हो। जो व्यक्ति भगवत भक्ति ठीक ढंग से नहीं करता, नियम ठीक से नहीं पालन करता, तो स्वभाव से क्रूर बन जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने चार नियम जो बताया कि मांस नहीं खाना चाहिए, जुआ ताश सट्टा वगैरह नहीं खेलना चाहिए, अवैध संग नहीं करना चाहिए, तो जो उन्होंने चार नियम बताया उसमें जो व्यक्ति नियम पालन नहीं करता उसका हृदय अश्म जैसा हो जाता है। अश्म मतलब पत्थर जैसा हो जाता है। पहले उस हृदय को दया छोड़ देती है, और जिस मनुष्य के हृदय में दया नहीं है वो मनुष्य की कटघरी में है नहीं, उसको दो टांग वाला दानव कहना चाहिए। तुम प्रकृति से क्रूर हो, यदि अन्य देवता मेरे शौर्य से अपरिचित रहकर तुम्हारे अनुयायी बनकर अपने उठे हुए हथियारों से मुझ पर आक्रमण करते हैं तो मैं अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से उनके सिर काट लूंगा और उन सिरों को भैरव तथा उनके गणों सहित अन्य भूतों के नायक को बलि चढ़ाऊंगा। अब आइए इस श्लोक के ऊपर। अथ हरेर्मे कुलिसेन वीर हरतम प्रमथ्यै शिरो यदिह तत्र नृणो भूत बलिम विधाय मनस्विनाम पाद रज प्रपत्स। किंतु यदि तुम युद्ध में अपने वज्र से मेरा सर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो तो हे परमवीर इंद्र, मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं यथा सियारों तथा गिद्धों को भेंट करने में परम प्रसन्न होऊंगा। आप लोग पहले कथा सुन चुके हो कि वृक्षों ने भी वैसे मनुष्य को धिक्कारा है जिस श्लोक को रुक्मिणी कृष्णदास ने क्लास लिए थे कि जिस मनुष्य को वैसे प्राणी को धिक्कारते हैं वृक्ष भी कि जिस शरीर से अगर किसी की रक्षा न की जाए, परोपकार न की जाए, किसी का हित न किया जाए तो वह शरीर बेकार है। तो यहां वृत्रासुर जी कह रहे हैं कि अगर मैं मरूंगा भी तुम्हारे हाथ से तो मैं अति प्रसन्नता महसूस करूंगा कि इस मरे हुए शरीर से सियार और अन्य जीवों गिद्धों को फिश दूंगा। अब देखो मरने के लिए वृत्रासुर जी कितने उतावले हैं, कितनी प्रसन्न मुद्रा में हैं कि मुझे मरने की चिंता नहीं है, मर करके भी मैं किसी दूसरे की भलाई ही करूंगा और तुम ऐसे हो कि खुद दूसरे को मारने के लिए कितने जीवों की, एक व्यक्ति की हत्या करके तूने वज्र बनवाया है। उनका संकेत दधीचि ऋषि के प्रति है कि तुम ऐसे स्वार्थी हो कि भगवान से कह करके और मेरे मरने के उपाय पूछ करके दधीचि ऋषि के हड्डी को लिया रहे, उनके शरीर को नष्ट करवाया, तभी तो उनके हड्डी से वज्र बनवाया और आज मारने के लिए उद्यत हो। तुम्हारे जैसा मैं नहीं हूं, मैं मर करके भी किसी दूसरे के पेट को भरूंगा, किसी की क्षुधा को पूरी करूंगा। आप सोचिए कि कितने अर्थ छिपा हुआ है इन श्लोकों के अंदर कि मरने की चिंता नहीं है, दूसरे की भलाई करने की, किसी के पेट की भरने की चिंता है। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन से छूट जाऊंगा। कर्म बंधन से छूटना है तो इस शरीर से किसी का अपशकुन न करके उसकी भलाई करने में लगो। किसी कवि ने लिखा है कि अगर किसी का अगर भला न कर सका तो बुरा भूल करके भी नहीं करना, भलाई करने पर तुले रहो। कभी भी सत्य असत्य से कभी हारा नहीं है। यह शास्त्र का वाक्य है, अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता कि सत्य से कभी असत्य हारा नहीं, अरे असत्य से कभी सत्य हारा नहीं। कभी भी झूठे व्यक्ति से सच्चे पद पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारेगा नहीं, एक न एक दिन उसकी विजय होगी। अब देखिए अपने कर्म बंधन से छूटेंगे, इस शरीर से वो फिस्ट देंगे। उसके बाद कहते हैं कि ऐसा करने के बाद भी लास्ट की स्थिति यह है, यह मेरा भाग्य होगा, अहो भाग्य होगा कि मैं ऐसे कार्य करूंगा तो नारद जैसे पवित्र व्यक्ति के स्वभाव को प्राप्त करूंगा, अर्थात उनके कृपा को प्राप्त करने में समर्थ होऊंगा। नारद जी का क्या काम है? गाली सुनने के बावजूद भी वो किसी दूसरे की भलाई करते हैं। अगर रामायण पढ़ेंगे तो नारद शब्द का अर्थ तुलसीदास जी ने तो सही लिखा है, लेकिन दूसरे लोग गलत समझते हैं। नारद कहने का अर्थ यह है कि जो किसी के दूसरे के घर को बिगाड़ दे। नारद का मतलब है इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करे, लेकिन नारद जी ऐसे नहीं करते थे, सत्य वचन बोलते थे उसकी भलाई के लिए, चाहे किसी कोई उनको गाली दे चाहे उनको कोई श्राप दे। नारद जी को दक्ष ने श्राप दिया था कि तुम ज्यादा देर तक किसी भी गृहस्थ के घर रुक नहीं सकोगे, उतना ही देर तक रुक सकते हो जितने देर में गाय दुही जा सके। अब वृत्रासुर अपने हृदय के भाव व्यक्त कर रहे हैं कि मैं अगर ऐसा करने का प्रयास कर रहा हूं तो यह निश्चित रूप से उस गति को मैं प्राप्त करूंगा जो नारद जैसे शुद्ध भक्तों को जो गति मिली है, वही गति मेरे को मिलेगी। नारद का काम ही है कि अपने ऊपर परिस्थिति उत्पन्न करने के बाद भी किसी दूसरे व्यक्ति की भलाई करना, और जो व्यक्ति किसी दूसरे की भला करता है उसका कभी भी बुरा नहीं होगा, कभी भी बुरा नहीं होगा। देखने में लगता है, संसारिक लोग अपने आंखों से देखते हैं, लेकिन सत्य पथ पर चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारा, महाभारत इसका प्रमाण है, पांडव इसके प्रमाण है। कि सब एक तरफ होने के बावजूद भी कौरव लोग पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब प्रभुपाद जी संदर्भ में तात्पर्य लिखते हैं, धैर्य के साथ पांच मिनट और आप लोगों का समय लिया जाएगा। श्रील प्रभुपाद महाराज की ये बात जरूर ध्यान दीजिए कि जो लास्ट वाला लाइन है, मनस्विनाम पादरज प्रपत्सय, यह शब्द इस श्लोक का सार है कि जिस व्यक्ति का मन अगर भगवान के चरण कमलों में रम चुका है, लग चुका है, उसको भगवान के चरण धूलि मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। क्योंकि जिसका मन भगवान के चरणों में रमण कर रहा है, भगवान के चरणों में लगा हुआ है, तो उसको और किसी वस्तु की या किसी की आशा करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल अपने मन को भगवान की पद रज प्राप्त करने में प्रपत्सय नियुक्त किए रहना चाहिए, लगाए रहना चाहिए। जो उनके चरणों में प्राप्त करने के जो साधन है उनको पालन करने में इस मन को, इस शरीर को, इस बाड़ी को लगाए रखना चाहिए। प्रभुपाद जी इस शब्द को लेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए तात्पर्य के अंदर, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं कि ए छे गोसाई यार मुई तार दास ता सवार पद रेणु मोर पंचग्रास, कि मैं छह गोस्वामियों का दास हूं और उनके चरण कमलों की धूली मुझे पांच प्रकार के भोजन देते हैं। कथा बहुत आगे बढ़ जाएगी इसलिए केवल सुन लीजिए कि पांच प्रकार के भोजन देती है। वैष्णव सदैव पूर्व आचार्यों तथा वैष्णवों के चरण धूलि की कामना करते हैं। वृत्रासुर को विश्वास था कि वह इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, क्योंकि यही भगवान विष्णु की इच्छा थी। वह मृत्यु के लिए सन्नद्ध था क्योंकि वह जानता था कि मृत्यु के बाद उसे भगवान का धाम प्राप्त होगा, वही परम गंतव्य है और वह वैष्णव के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। छाड़ीय वैष्णव सेवा निस्तारीय पाए छे केवा, बिना वैष्णव की कृपा के कोई भी भगवान के धाम नहीं गया है। अतः इस श्लोक में मनस्विनाम पादरजा प्रपत से मुझे परम भक्तों के चरण कमलों की धूली प्राप्त होगी। इतना गाढ़ विश्वास वृत्रासुर जी की है कि हे इंद्र, मैं जो कार्य कर रहा हूं, जिस स्थिति में हूं, यह मुझे पूरा विश्वास है कि नारद जैसे भक्तों को जिस प्रकार भगवान की कृपा मिली हुई है, वैसे मेरे किए हुए कर्मों का फल यह होगा कि मेरे ऊपर भगवत भक्तों की कृपा होगी, भगवान का धाम मिलेगा और भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहेगी। आगे के प्रार्थना को आप सुनेंगे, जो वृत्रासुर जी ने प्रार्थना किया है, उन्होंने अपना सारा मनो की भावना जो है, शरीर की सारी स्थितियां है, भगवान को अर्पित करके, और उन्होंने कहा ये भगवान मुझे मरने से डर नहीं है, मुझे जन्म लेने से डर नहीं है, इस संसार में बार बार आने से डर नहीं है, डर मुझे इस बात की है कि आपके भक्तों की संग कभी छूट न जाए। हे भगवान, मुझे बार बार इस संसार में जन्म देना, लेकिन ऐसे घर में जन्म देना जहां आपकी भक्ति कर सकूं, आपके भक्तों की संगति मिल चुके मिल सके, वैसे घर में मुझे जन्म देना। इस प्रकार की आशा करके तब मरने के लिए उद्यत हो रहे हैं वृत्रासुर जी यहां, और उन्हें पूरा भरोसा है कि मैं अपने मन को कृष्ण चरणों चरण कमलों में लगा चुका हूं और मेरी सदगति होगी, मुझे भक्तों की संगति मिलेगी, अर्थात मेरा जो अगला जीवन होगा वह पूर्ण भक्तिमय होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं और जानते हैं कि वृत्रासुर जी कौन थे, राजा चित्रकेतु। राजा चित्रकेतु की कितनी पत्नियां थी? 1 करोड़। और सारी की सारी निसंतान थे। आगे की कथाओं में आएगा ये सब चीजें, लेकिन हम लोग कथा को वहां विराम दें कि अब वृत्रासुर जी अपने मन को उस आशा पर टिकाए हुए हैं कि हे इंद्र, तुम मुझे मार भी दोगे तो मैं अपने इस शरीर से किसी की भला करूंगा, उसके बाद भी मेरी मन स्थिति भगवान के चरणों से या भगवान के भक्तों के संगति से कभी दूर नहीं जाएगा, और मेरा मन यही कामना पर टिका हुआ रहेगा कि हे भगवान के भक्त, मेरे ऊपर कृपा बनाए रखो और भगवान के चरणों में मेरे मन को लगाए रखो। और यहीं इस मन को और अपने हृदय की भावना को रोकिए और फिर कल अगले वाले कथा को सुनते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि कथा को देखने का प्रयास कीजिए, देखने का, सुनने का और हृदय में रखने का। यह नहीं कि सुना, श्रोता भी 2 प्रकार का शास्त्रों में बताए गए हैं, श्रोता और श्रोता। श्रोता बनिए, श्रोता नहीं कि किसी को दोष को देखने के लिए आओ यहां, अरे तो सोता है, तो ऐसे बोलता है, ये करता है, उस भाव को भूल जाओ, श्रोता बनो। श्रोता भी 2 प्रकार के और हुए हैं, अवर और प्रवर, जिनकी बहुत ऊंच स्थिति, प्रवर श्रोता की ऊंच स्थिति बताई गई है, जिसके अंदर पक्षियों को भी रखा गया है, तोता और मैने को भी रखा गया है प्रवर श्रोता में, कि बड़े ध्यान से सुनते हैं, अगर उनको राम राम रटाइए तो वो सुन करके याद कर लेते हैं, और अवर श्रोता के अंदर जितने भी बकुले स्वभाव वाले लोग हैं, जिनका साधु स्वरूप तो है, साधु भेष तो है, लेकिन केवल गंदगी को पकड़े रहते हैं, केवल किसी दूसरे के दोष को निकालते रहते हैं, वैसे बकुले वाले स्वभाव को छोड़ो, बकुला पक्षी मत बनो। ये अवर श्रोता के अंदर बकुले पक्षी को रखा गया है, जिनका शरीर पूरा साफ है, पूरा सफेद है, लेकिन उनकी नजर कहां रहती है? मछली के ऊपर, गंदी चीज के ऊपर। वो स्वभाव को छोड़ दो, तब तुम भगवान को समझ पाओगे। आप वैसे भक्त की कथा सुन रहे हो जो असुर वंश में पैदा होने के बाद भी उनकी स्थिति कितनी ऊंची है, पढ़ करके सुन करके आंकड़ा लगा सकते हैं। जिनका मन उस आशा पर टिका हुआ है कि प्रभु मरूं या मरने के बाद या नहीं मरूं तब भी हमारा मन पाद रज भगवान और भगवान के भक्तों के धूल कण को प्राप्त करने का प्रयास में लगा रहे, इस प्रार्थना को, इस चीज को अपने हृदय में रखिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराश्रमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्री श्री राधिका रमन जी की गौर हरि प्रमानंद। कोई प्रश्न होगा तो बाद में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि समय नहीं है।